2011 लेक्चर नंबर 2 षटकारक। ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोए सवसाहुं। जं जस्य जं देशे जेन विहाणेन जं कालमि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अहवमरणं वा संतस्वतं निदेशे तेन विहाणेन तं निकालं मे कोशकदिवारे दुम् इन्दो वा तह जिनिन्दो वा एवं जो निश्चयदो जानदि दौवाणि सौपच्छाये शोषदिट्ठि शुद्धो जो शङ्कदिशोः कुदिट्ठि। वस्तु व्यवस्था में जो कारण कार्य संबंधी जो सहज व्यवस्था है उसमें से जो षटकारक का विषय है उसकी चर्चा करते हुए हमने कर्ता कारक की चर्चा की थी। अभी कर्म कारक की बात अपनी चल रही है। कर्म शब्द अनेक अर्थों में आता है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, और कर्म इन पर्याय के अर्थ में भी कर्म शब्द प्रयुक्त तो होता है। उसमें भी हम कहते हैं कि कर्ता ये जो उपादान कारण है और निमित्त कारण है वो सभी उसके कर्ता के रूप में आते हैं और उसका जो कार्य है पर्याय है वह उसका कर्म कहने में आता है। अब यहाँ हम 104 पृष्ठ पर आए हैं। हमने देखा था कि जब ये षटकारक की बात आती है तो द्रव्य में षटकारक गुण रूप से विद्यमान है और द्रव्य और पर्याय को अभेद करके कथन करते हैं तो द्रव्य ही स्वयं कर्ता है, द्रव्य ही स्वयं कर्म है, क्योंकि पर्याय को उसमें अभेद कर दिया ना, तो द्रव्य ही अपना कर्म है, द्रव्य ही अपना करण है, द्रव्य ही अपना संप्रदान है, अपना अपादान है और अपना अधिकरण है। जब हम पर्याय की बात करते हैं, एक एक पर्याय पर षटकारक घटित करने हैं तो वो पर्याय के अपने षटकारक, क्योंकि जो गुण है षटकारक रूप से उसकी भी पर्याय होती रहती है और प्रत्येक पर्याय स्वतंत्र रूप से अपने अपने षटकारक से उस समय उपस्थित होती है, उत्पन्न होती है। इन्हें पर्याय स्वयं ही करता है। इन्हें पर्याय का कर्ता कौन, तो कहेंगे पर्याय स्वयं। दोनों अपेक्षा हमें पता होनी चाहिए, पर्याय का कर्ता कौन तो हम द्रव्य कहेंगे, तो वो तो त्रिकाली उपादान की अपेक्षा हमने कहा कह दिया कि द्रव्य पर्याय का कर्ता है, परंतु जब एक एक पर्याय की अलग बात करेंगे तो पर्याय के षटकारक कहते हुए कहेंगे कि पर्याय स्वयं करता है, पर्याय ही अपना कर्म है, वही अपना करण, वो सभी छह कारक उसके ऊपर हम घटित करते हैं। इसकी तो बात हमने कल सुबह देखी थी। तो इसको समझने से फायदा क्या है हमारा, क्योंकि हम कोई भी सिद्धांत जब समझते हैं तो पहले अपने पर अप्लाई करना आना चाहिए और उसका हमें क्या लाभ है उसकी भी चर्चा करनी चाहिए। तो जैसे हमने द्रव्य और पर्याय तो इन जनरल बात की, अब हमें अपने पर घटित करना है तो मैं स्वयं एक जीव द्रव्य हूँ यानी मैं आत्मा हूँ, तो हमें तो शुद्ध पर्याय हमारा साध्य है, हम प्रकट करना चाहते हैं, तो उसके लिए कर्ता कर्म वगैरह कौन है, तो कहते शुद्ध पर्याय स्वयं करता है, वो स्वयं अपना कर्म है। तो ये सारे छह कारक उस पर घटित करेंगे तो हमें ये बात सिद्ध होती है कि हमारी स्वयं की सभी पर्याय अपने स्व समय पर अपने से ही उत्पन्न होने वाली है। तो हमारी दृष्टि पर पदार्थों से तो हटती ही है, अपनी पर्याय उनसे हटकर अभी क्या कहाँ देखना रह गया, तो द्रव्य स्वभाव पर। नहीं तो क्या होता है, अरे पर्याय उत्पन्न होने तो कौन मेरे पर्याय का करता है, तो बाहर दृष्टि भटकती है। कौन गुरु आकर मेरा कार्य करेगा, कौन भगवान आकर मेरा कार्य करेगा। अब ना पर पदार्थों की ओर देखना रहा और ना ही हमारे पर्यायों की ओर देखते देखते पर्याय तो सुधरने वाली नहीं, तो हम द्रव्य स्वभाव में अपने स्वभाव में ही ये सारी व्यवस्था जिसको कहते हैं ऑटोमेटिक व्यवस्था पड़ी है, तो हम निश्चिंत होकर अपने द्रव्य स्वभाव को देखते रहेंगे, ज्ञाता दृष्टापना प्रकट हो जाएगा,
पराधीन से छूट कर
बिल्कुल पराधीनता मिट जाती है, निराकुल हो जाते, कुछ न करना कुछ धरना, बस आनंद में रहना है, तो ये वितराग सहज आनंद की प्राप्ति हो जाती है। अब करण कारण की बात हम कहेंगे। करण कारण से क्या देखा था नीलाबेन, याद है? करण किसको कहना?
साधन
को। बहुत अच्छा। लोगों में करण कारक अर्थात साधन के बारे में भी कुछ कम घोटाले नहीं है। ये स्टोरी आपको बताई थी। देखो, एक बार एक 87 वर्ष के बुजुर्ग अपने यहाँ आए थे। वे कहने लगे कि जैन तत्व परिचय और करणानियोग परिचय दोनों पुस्तक पढ़कर मुझे पक्का विश्वास हो गया कि आत्मानुभव का शास्त्र शुद्ध मार्ग मुझे आपसे प्राप्त होगा। ये दोनों पुस्तकें पढ़कर वो आए थे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप आत्मानुभवी है। मैं तो किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन में गत 4 सालों से साधना कर रहा हूँ, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु सारा व्यर्थ गया। तो मैंने उनसे पूछा था कि आपने क्या क्या प्रयत्न किए वो तो बताइए, क्योंकि वो तो कह रहे थे ना मैं प्रयत्न कर रहा हूँ। तो उन्होंने बताया, मैं रोज प्रातःकाल 4 बजे उठकर 1/4 घंटा स्थिर आसन लगाकर नासाग्र दृष्टि रखकर ओम का जाप तथा सिद्धों का जाप करता हूँ, ओम नमः सिद्धेभ्यः कहता रहता हूँ। तो मैंने पूछा, चाचा जी सिद्धों का स्वरूप तो आप जानते ही होंगे ना? तो वो कहने लगे, उसकी क्या आवश्यकता है, मुझे कुछ उनका स्वरूप मालूम नहीं है। यानी भोले लोग होते हैं, उनको ऐसा ही लगता है कि नाम की बहुत महिमा है तो मैं नाम का उच्चारण करूंगा तो मुझे कुछ प्राप्ति होगी, परंतु किसी चीज का नाम लेते हैं तो उसका स्वरूप पता नहीं है, तो केवल कुछ शब्द रटने से तो कुछ प्राप्ति नहीं होती है। जब हम इमली कहते हैं तो इमली खट्टी है, ज्ञान में आता है तो वो सुनते ही वो मुझे वो लाल निकलती है ना, क्योंकि हमें उसकी खट्टेपन का एहसास है। तो ऐसे हम जब भगवान का नाम लेते हैं, सिद्धेभ्यः कहते हैं, तो क्या सिद्ध भगवान का स्वरूप हमारे मन में आता है कि वो द्रव्य कर्म भाव कर्म और नौ कर्म से रहित है, ज्ञान में है, वितरागी और केवल ज्ञानी है? ये उनका स्वरूप अगर अपने अंतचक्षु के सामने, मन के सामने अगर नहीं आता है, तो हमने केवल नाम लेने से कोई फायदा नहीं। तो वो कहते थे, मुझे तो केवल मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक्त्व की प्राप्ति करनी है, अनंत अनुबंधी तो हमें है ही नहीं, क्योंकि हम इतने पुण्य कर रहे हैं मंद कषाय है। यानी ये भी लोगों की ऐसी भ्रमणा है, हम तो जैनी है, हम तो सदाचार से रहते हैं, ये अनंत अनुबंधी हमारे है ही नहीं है। यानी केवल कषाय की तीव्रता होना अनंत अनुबंधी नहीं है। अनंत अनुबंधी कषाय उसको कहते हैं जो सम्यक्त्व होने नहीं देता। अनंत अनुबंधी में भी मंद कषाय हो सकते हैं।
अनंत अनुबंधी में तो तीव्र ही नहीं होते।
वो हम क्या देखते हैं, वो कितने कितने जोर से क्रोध करता है, कितना मंद है, उसको ही देखते हैं। तो जब तक सम्य दर्शन नहीं हुआ है, मिथ्या दृष्टि है, उसमें हम कहेंगे बहुत मंद कषाय है, भला आदमी है, तो उसका अनंत अनुबंधी है कि नहीं है? छोराला में लिखा है ना, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवे को उपजायो। मैंने द्रव्यलिंगी मुनि दिगंबर मुनि अवस्था धारण की है, परंतु आत्मा का अनुभव नहीं हुआ है, ऐसे भी जीव है इस विश्व में, तो उनके अनंत अनुबंधी गया क्या है? अभी
नहीं गया,
क्योंकि बाह्य व्रत धारण करने से नहीं जाता है, तो कैसे जाता है? आत्मा का अनुभव करने से। तो सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई है, उसका अर्थ क्या है? अनंत अनुबंधी है, परंतु बाह्य में इतने मंद कषाय है। अभी 9वें 10वें वहाँ के तो जीव जो है देवलोक में, वो तो मंद कषाय, कोई हिंसा आदि का कार्य है ही नहीं है, बिल्कुल सज्जनता से रहते, शुक्ल लेशा कही जाती उनकी, तो फिर भी कैसे अनंत अनुबंधी है उनका? यानी मात्र मंदता और तीव्रता को अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान नहीं कहते हैं।
वो अभी भी?
उसकी जाति अलग अलग है तो नहीं? अभी क्या है, ये भोले लोग होते हैं उनको अंदर से लगता है ना, मुझे भी मोक्ष मार्ग प्रकट हो, मैं भी आत्मा का अनुभव करूं। और ऐसे ही जिसको लोगों को दिशा भूल करने वाले भी लोग होते हैं, हम आपको समय दर्शन दिला देंगे, हम आपको मोक्ष का रास्ता बता देंगे, तो ऋषि कुछ भी पट्टी पढ़ाते रहते हैं, क्योंकि उसके तो तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं है, शब्द केवल मालूम है, समय दर्शन ज्ञान चरित्र रत्न, ऐसे बड़े बड़े शब्द तो यूज करेंगे परंतु उसका सही अर्थ पता नहीं होता, न सुनने वालों का न सुनाने वालों का, इसलिए ऐसी बातें चलती रहती है। अब तो प्रेक्षा ध्यान, विपश्यना आदि विविध ध्यानों की फैशन चल रही है, क्लासेस चल रहे हैं। देखो ध्यान है, उसमें क्या है, एकाग्रता कर रहे हैं, मन की कुछ शांति हो रही है, परंतु वो आत्मानुभव नहीं है। ये सारे इधर चक्र है उधर चक्र है जो भी कहते हैं, वो भी ये ध्यान यानी क्या है, मन की एकाग्रता की बात है। मन को एकाग्र करना अलग बात है और आत्मा का अनुभव करना अलग बात है। परमात्मा प्रकाश में ये सभी ध्यानों के नाम लेकर ये सब अलग अलग चक्रों की वो भी बात अभी आएगी, आने वाली है। तो वहाँ ये मन को एकाग्र करने के लिए बस ठीक है, उतने तक ही उसका जो कुछ है फायदा है, परंतु हमें केवल मन एकाग्र नहीं करना है। वहाँ तो मैं मनुष्य हूँ मानकर हम मन एकाग्र करते हैं, तो बस उसके बहुत मन इधर उधर भटकता था उतना उसको फायदा हुआ, कुछ उसको लौकिक शांति मिली, परंतु हमारा देह के आत्मा की अनुभूति करना। परमात्मा प्रकाश में भी वारंवार वीतराग निर्विकल्प समाधि ऐसा शब्द आया है, वारंवार वीतराग निर्विकल्प समाधि, यानी जिस ध्यान से आत्मा का अनुभव होगा उस ध्यान की हमें आवश्यकता है। जो लौकिक अन्य जो ध्यान है कि बस मन अन्य तरह से हटाकर एक जगह केंद्रित तो किया, परंतु मैं कौन हूँ इसके बारे में कोई निर्णय नहीं है, बहुत सारी भ्रमणा चल रही है, और बस उसने श्वास पर एकाग्र किया या अन्य किसी चीज पर एकाग्र किया है, तो एकाग्रता तो हुई, कुछ शांति का अनुभव हुआ, ये बहुत इधर उधर विकल्प जाल में भटकता था वो कुछ कम हुआ, परंतु वो आत्मानुभव का मार्ग नहीं है, ये बात यहाँ बता रहे। कोई स्वयं आसमान में उड़ान लगाते हुए अनुभवता है, तो किसी को शुभ्र सफेद दिव्य प्रकाश दिखाई देता है, तो कोई संगीत के आलाप द्वारा आत्मा की अनुभूति होने का दावा करते हैं, ये आत्मा की अनुभूति नहीं है। हल्का हल्का फील होता है या कोई दिव्य प्रकाश दिखता है, ये दिखने वाला है क्या है, ये पुद्गल है, वो आत्मा का अनुभव नहीं है। इसी को वे आत्मानुभूति एवं सम्यक दर्शन मान भी लेते हैं। ध्यान के ध्येय संबंधी तो अज्ञान है ही, क्या कहा, हमें ध्यान करना है तो किसका ध्यान करना है उसको कहेंगे ध्येय। जिस चीज का ध्यान किया जाता है वो है ध्येय। हमें किसका ध्यान करना है तो शुद्धात्मा का, खाली आत्मा का भी नहीं कहा, शुद्धात्मा का। कौन सा शुद्धात्मा, जो हम जीव तत्व जिसको कहते हैं, जिसको दृष्टि का विषय कहते हैं, उसका ध्यान करना है। तो उसका ध्यान करने से हमें आत्मानुभूति प्राप्त होगी, अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव होगा। केवल ध्यान करना तो हमने इसकी ओर, जिसको वो त्राटक लगाना कहते हैं, या एक पे किसकी ओर देखते रहे, हमने पूरे विचारों को भी शांत किया और बस श्वास लेते रहे, इसको देखते रहे, तो विकल्प थोड़े मंद हो गए, उसको भी ध्यान कहेंगे, परंतु वो ध्यान आत्मानुभूति में बिल्कुल कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भ्रांति है ना, मिथ्या अभिप्राय, वो तो चल रहा है। क्या मान रहे हैं, मैं शरीर हूँ, तो क्या ऐसा एक तक किसी को देखते रहने से उसको आत्मा की अनुभूति होगी क्या? ख्याल में उसको भी ध्यान कहेंगे, परंतु वो अपने लिए कुछ कार्यकारी ध्यान नहीं है। आत्मा की अनुभूति में जो कार्यकारी ध्यान है वो यह नहीं है, वो उसका साधन नहीं है, ये बात कहना चाहते हैं। तो कहते ध्यान के ध्येय संबंधी तो अज्ञान है ही, तो हमारा ध्यान का ध्येय कौन है? तो निज शुद्धात्मा है, जिसको हम जीव तत्व कहते हैं। वो कैसा है जीव तत्व? तो अन्य सभी तत्वों से भिन्न है, जीव आश्रव बंध संवर्ण निजा मोक्ष आदि सबसे भिन्न ऐसा मैं जीव तत्व हूँ। तो उसका पहले निर्णय होगा, ये कारण कार्य संबंधी जो कुछ विपरीत मान्यता है उस संबंधी आगम से सही ज्ञान होगा, निर्णय होगा, और तब जाके हम अंतरंग में स्थिर हो गया यानी अपने को विषय बनाएंगे, अपने आप में स्थिर हो जाएंगे, उसका ध्यान करेंगे, तब जाके आत्मा की अनुभूति होगी। तो कहते ध्यान के ध्येय संबंधी तो अज्ञान है ही, उसके साधन संबंधी यानी करण कारक संबंधी भी अज्ञान है, क्योंकि ये ऐसे जो बाह्य अन्य जो ध्यान है, तो जैसे कुंडली जागृत करना कहो या अमुक चक्र का ध्यान करो या श्वास का ध्यान करो, परंतु जब तक तत्व का निर्णय नहीं है और ऐसे बाह्य में कहीं तो हमने मन को एक करता एक जगह लगा दिया, तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं, वो सच्चा साधन नहीं है, ये बात कहना चाहते। आत्मानुभूति ज्ञान गुण की पर्याय है, क्या कहा? अनुभूति है ना, जानने में आया, क्या जाना आत्मानुभूति में? अतीन्द्रिय आनंद का अनुभव किया, उसको कहेंगे आत्मानुभूति, ये ज्ञान ने जाना, तो ये ज्ञान गुण की पर्याय है। तो फिर उसका साधन अर्थात करण भी ज्ञान की पर्याय ही है। आत्मानुभूति किस गुण की पर्याय है? तो ज्ञान गुण की। तो हमने क्या अभी पर्याय के षटकारक पर्याय में है, तो उसका साधन क्या है? तो ज्ञान गुण की पर्याय स्वयं उसका साधन है, क्योंकि ज्ञान गुण की पर्याय ने जान लिया, तो ज्ञान गुण की पर्याय अपने को जानते हुए उत्पन्न हुई, वही करता है, वही कर्म है और वही करण है, वही अपना साधन है। ये जानना 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 कार्य तो अनादि से हो रहा है, तो साधन हमारे पास है कि कहीं अन्य से ढूंढना पड़ेगा हमें? हमारे पास है जानना, ये ज्ञान गुण की पर्याय है और वो पर्याय तो हर समय हो रही है, यानी हमें अपने को जानना है तो उसका करण यानी साधन हमारे पास ही मौजूद है। शास्त्र में बताया है कि प्रज्ञा छैनी द्वारा, छैनी समझते हैं? वो पहले के जमाने वो लकड़े ऐसे काटते थे ना, तो ऐसी लोहे की छैनी ऐसी रखी जाती है, ऊपर से हथौड़े से मारते थे। क्या कहते
हैं?
काकरू। टांकड़ू, अच्छा, हाँ हाँ,
धारदार होता है।
हाँ धारदार होता है,
पकड़ते हैं
बरोबर, ऊपर से उसके पत्थर की शिला, हाँ हाँ, आलस बरोबर, वो उसके संधि होती है तिरार, उसमें बरोबर उस पॉइंट पर एक करेंगे तो ऐसे एकदम शक्ले हो जाती है, तो उसको कहते हैं छैनी, छिन्नी। तो ऐसी है वो प्रज्ञा रूपी यानी ज्ञान रूपी, प्रज्ञा यानी ज्ञान। तो कहते शास्त्र में क्या बताया है, प्रज्ञा छैनी द्वारा भेद विज्ञान करके, जैसे वो छन्नी जो है वो उस तिराड़ में बराबर वो संधि में रखी जाती है और फिर ऊपर से उसको पटक टपकते है, ऐसे ये जो भेद ज्ञान रूपी छैनी है, भेद ज्ञान करना है, भेद का ज्ञान करना है, किसमें किसमें, मैं एक बाजू और एक दूसरे बाजू आश्रय बंध वगैरह सभी पूरी दुनिया, तो इसका भेद जानना है हमको किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। तो ये जो हमारा ज्ञान है, ये भेदों का ज्ञान करके हम अपने को और पर को भिन्न भिन्न पहचानेंगे, इसको कहेंगे प्रज्ञा छैनी। तो प्रज्ञा छैनी द्वारा भेद विज्ञान करके अर्थात ज्ञान द्वारा स्व और पर का भेद जानकर, क्या करना है हमें? कुछ भिन्न करना नहीं है, भेद को जानना है। शरीर भी यहीं पर है और हम भी यहीं पर है, तो हम यहाँ है तो हमारे में उत्पन्न होने वाला ज्ञान भी यहीं पर है और हमारे उत्पन्न होने वाले राग द्वेष भी यहीं पर है, तो ये सभी चीजें यहीं पर है, तो ये सब इकट्ठे दिखते हुए भी हमें ज्ञान के द्वारा निर्णय करना है उसमें स्व कौन है और पर कौन है। शरीर को जुदा करना नहीं, वो जुदा ही है, इसका ज्ञान करना है। तो कहते ज्ञान द्वारा स्व और पर का भेद जानकर प्रज्ञा द्वारा ही स्व का ग्रहण करना है, स्व को जानना है। तो वे बात है ना, ग्रहण करना का अर्थ क्या है? जानना। क्योंकि स्वयं तो स्वरूप से तो है ही है, अभी तक हमने अपने को स्वरूप से ग्रहण नहीं किया था, नहीं जाना था। क्या कर रहे थे? शरीर को स्वरूप से ग्रहण कर रहे थे, ये शरीर मैं हूँ ऐसा मान रहे थे।
आत्मा को थर्ड पर्सन बना दिया।
हाँ, ये तो मैं मनुष्य हूँ और मुझे आत्मा को जानना है। क्या? और वो भी कैसा आत्मा? आत्मा तो रागी द्वेषी भी आत्मा हो सकता है, परंतु हमें किस आत्मा को जानना है? जो जिनेन्द्र भगवान ने जिस शुद्धात्मा का वर्णन किया है वह मैं हूँ, ये कहाँ निश्चित होता है? ये सब ज्ञान के द्वारा हो रहा है। ज्ञान ही साधन है। क्या जानना है? अपने को ही जानना है ना, क्योंकि ज्ञान तो सबको बताता है। जैसे ज्ञान ने जाना इतनी सारी वस्तुएं हैं, तो उसमें कोई आपकी चीज है तो आप कैसे पहचानते हो? ये चीजें पड़ी है वहाँ पर, फिर हम जानते हैं कि ये मेरी चीज है, मेरी चीज नहीं है। बहुत सारी पुस्तकें, बहुत सारी वस्तुएं पड़ी है, तो उसमें मेरी कौन सी चीज है, हम ज्ञान द्वारा उसको जान लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पर वस्तुएं भी है, रागवेश के परिणाम भी है, अन्य चीजें भी है, और ये शुद्धात्मा भी है। ज्ञान ने सबको जान लिया, अब उसमें मैं किसने स्थापित करना है? तो कहते वो स्व और पर, स्व को स्वरूप से और पर को पर रूप से जानना मात्र, और कुछ नहीं करना है। इसको कहते प्रज्ञा द्वारा ही स्व का ग्रहण करना है, यानी स्व को जानना है। यह है करण कारक हुआ, यानी साधन ही अपने पास मौजूद है। अब संप्रदान कारक की बात करेंगे। सेकंड लाइन, संप्रदान अर्थात ज्ञान का जो कार्य हुआ, जो ज्ञान हुआ वह स्वयं को ही दिया। हमने किसी चीज को जाना, ये जाना हमने किसको दिया? तो हमारे पास ही रहा ना। हमें जो ज्ञान हुआ, मैंने चीज आपको दिखाई तो आपको ज्ञान हुआ, तो ये ज्ञान कहाँ गया? अपने में रहा ना। तो ये जो ज्ञान की पर्याय है, जानने का जो कार्य हुआ है वो हमने अपने को ही दिया। यहाँ लिखा देखो, ज्ञान का जो कार्य हुआ, जो ज्ञान हुआ वह स्वयं को ही दिया। क्योंकि संप्रदान कहा ना, इसलिए वो किसको दिया, ऐसा ये शब्द आता है। हम निमित्त का कथन करते हैं कि गुरु ने शिष्य को ज्ञान दान किया। सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान दान, सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा कहते भी है कि ज्ञान ऐसी लक्ष्मी है। देखो, लौकिक की लक्ष्मी तो खर्चा करने से तो कम होती है, उनसे ज्ञान रूपी लक्ष्मी ऐसी है कि जिसकी जितनी दे दो उतनी बढ़ती है, तो इसको श्रेष्ठ दान कह दिया है। तो गुरु ने शिष्य को ज्ञान दान किया, ऐसा कहेंगे हम निमित्त बताने के लिए। वो कुछ शिष्य को उठा के नहीं देता है, वहाँ निमित्त का ज्ञान कराया जाता है। जहाँ ज्ञान हुआ तो शिष्य को जो ज्ञान हुआ तो गुरु उसमें निमित्त है, ये कहा जाता है। परंतु गुरु कुछ अपने शिष्य को ज्ञान या सम्यक तो प्रदान नहीं कर सकता। क्या कहा है? ये ज्ञान किसी गुरु ने दिया, गुरु उठाकर उसके ये ले बेटा ये ज्ञान ले जा, या ये मैं तुझे सम्यक तो देता हूँ, ऐसी तो बात नहीं हो सकती। आपने सुना होगा मैं तुमको अमुक एक गुणस्थान दे दूंगा, ऐसी चलती है बातें लौकिक में, ऐसी बातें चलती रहती हैं।
कैसी बात?
कोई कहता है मैं तुमको सम्यक तो दे दूंगा, मैं तुमको ज्ञान दे दूंगा,
अपनी दुकान चला ले,
हाँ दुकान चलाता है, मैं तुमको 10वां गुणस्थान दूंगा क्या 12वां गुणस्थान दूंगा, ये ऐसी भ्रमणा चल रही है। और ऐसे के पीछे सैकड़ों लोग आदमी भागते भी उनके पीछे पीछे, और उनको सम्यक तो प्रदान करने की विधि भी चलती है जाहिर में। नहीं सुना आपने कभी ऐसे कुछ ना जाहिर में? अभी क्या करे, किसका नाम ले हाँ देखो कि ये निमित्त का ज्ञान किया जाता है, परंतु गुरु कुछ अपने शिष्य को ज्ञान या सम्यक तो प्रदान नहीं कर सकता, उसकी पर्याय ला नहीं सकता। यानी भोले जीवों को ये पता नहीं ना, तो चलो ये अपने को धर्म मिल जाने वाला है, ये सम्यक तो देने की विधि कुछ चल रही है, कुछ क्रिया चल रही है, तो लगता है नहीं हमको ये मीन से कुछ बोधि प्राप्त हो गई, कुछ सम्यक तो प्राप्त हो गई।
एक चीज है सम्यक दर्शन शब्द इतना फेमस हो गया है।
हाँ।
और आप तो श्रीमद जी के हिसाब से कि गुरुदेव के हिसाब से, क्योंकि तो इतना फेमस सब लेना चाहते हैं।
हाँ, सब लेना चाहते हैं।
लेकिन ये कैसे दिया
तो वही तो इतना भी विचार नहीं करते कि कोई हमें सम्यक को कैसे दे सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि कुछ गुरु ने अपने को कुछ कर दिया, कुछ माथे पे हाथ ले गया, ये कुछ क्या करते मुझे भी पता नहीं है, उन्होंने हमको सम्यक को दे दिया।
ये द्रव्य गुण पर्याय की मालूमात नहीं है, इसलिए सारे घोटाले होते हैं, क्योंकि जहाँ द्रव्य वहाँ उसकी पर्याय होगी, क्या पर्याय बाहर क्या नहीं है।
निमित्त तो ऐसे हम स्कूल में पढ़े तो कौन से शिक्षक से हम चर्चा करते हैं, किसने पढ़ाया आपको, तो कहने में आता है, परंतु वो क्या है, निमित्त का ज्ञान कराया जाता है, परंतु ज्ञान तो उस प्रत्येक विद्यार्थी को अपने से होता है, गुरु से होता तो सबको समान होना चाहिए, तो कोई फेल होता है, कोई फर्स्ट क्लास फर्स्ट भी आता है। गुरु ने सिखाया ये कहने की पद्धति क्यों है, गुरु ने ज्ञान दिया कथन करना अलग बात है, और ऐसा ही मान लेना कि इन्होंने हमको सम्यक तो दे दिया, ऐसा कोई किसी को सम्यक तो दे नहीं सकता। अनेक लोग कहते हमने तो गुरु कर लिया है? ऐसा भी कहते ना, हमने गुरु कर लिया, कि अपने अपने में इतनी नहीं, मगर अन्य मतियों में तो ऐसी बहुत भ्रमणा चलती है। हाँ, हमारा सारा भार गुरु पर है, गुरु कर लिया बस, अभी सारा वो गुरु ही अपने को ठिकाने लगा दे, थोड़ा जो कुछ हो गया तो गुरु के पास दौड़ रहे चले जाते, ये करू के वो करू, अमुक अमुक करने आप आज्ञा दीजिए, गुरु की आज्ञा उसको कहते हैं, गुरु ने जो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है उसको कहेंगे गुरु की आज्ञा, उसको कहेंगे उसको सुनना, वो कहेंगे गुरु की उपासना। तो ये गुरु के चार बार नमस्कार करना और हाथ पैर दबाना वो गुरु की उपासना या सेवा नहीं है, उनकी सेवा उनकी उपासना का अर्थ होता है उन्होंने जो मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया है उसको ग्रहण करना, समझना, हाँ, और उससे समझकर अपना आत्म कल्याण करना, उसको कहेंगे गुरु उपासना। परंतु भोले जीवों को ये अर्थ समझ में नहीं आता है, और किसी व्यक्ति को हमने गुरु मान लिया, अब वो सारा हमारा भार उसके ऊपर ये मान लेते हैं। ऐसा स्टेशन पर हम देखते किसी ने हमारे ने कुली कर लिया और सारा भार उस पर सौंप दिया, उसी स्वर में गुरु करने का प्रकार कुछ अजब ही लगता है, क्योंकि मान लेते ना अभी हमने गुरु कर लिया, ये हमारा सारा भार उसके ऊपर है। मोक्ष मार्ग का उपदेश यानी देशना लब्धि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु से तथा आत्मानुभवी ज्ञानी पुरुष से ही प्राप्त होती ही लगाया, अन्य किसी से भी नहीं, यह बात सत्य है, परंतु यह तो निमित्त है। हम स्वयं जीव द्रव्य मोक्ष मार्ग का त्रिकाली उपादान कारण है। मोक्ष मार्ग यानी संवर निर्जरा, वो हमारे में ही प्रकट होगी, समय दर्शन ज्ञान चारित्र ये हमारी पर्याय है, आत्मा की यानी जीव द्रव्य की पर्याय है, तो उसका उपादान कारण कौन है, तो जीव द्रव्य स्वयं तथा पुरुषार्थ और तत्समय की पर्याय की योग्यता से ही मोक्ष मार्ग प्रकट होता है, समय दर्शन आत्मानुभूति प्रकट होती है। तो ये स्वयं ही स्वयं को देता है, कोई अन्य हमें दे नहीं सकता, ये हमें ये संप्रदान कारक से पता चलता है। अब अपना समय हुआ है, यहीं पर रुकेंगे। बोलो 2400 भगवान की।